السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي كيسي عم سب لوك؟ الحمد لله. آج هم إن شاء الله بوك تو کا فرس ٹاپک شروع کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك تو میں جو ہم ٹاپک سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نبر. نبر کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں, نبر کہتے ہیں آواز کو اونچا کر دینا ورڈ کے کسی خاص لیٹر کے اوپر تاکہ اس خاص حصے کی آواز اس کے نیبرنگ لیٹر سے ذرا پرومیننٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی آواز کو اونچا کر دینا, یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک کائنڈ آف ایمفسس ہے. ٹھیک ہے, کسی ایک ورڈ کے خاص پارٹ کے اوپر ایک ایمفسس دینے کے لیے آپ آواز کو تھوڑا اونچا کر دیتے ہیں تاکہ اس خاص حصے کی آواز, اس خاص لیٹر کی آواز اس کے نیبرنگ لیٹر سے ذرا پرومیننٹ ہو جائے. جہاں جہاں ہم نبر کرتے ہیں وہاں وہاں نبر ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں ضرورت ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر آواز پرومیننٹ کریں, اور اگر ہم نہیں کرتے تو اس چیز کا یا تو کوئی حرف مس کر دیں گے اور یا پھر وہ لیٹر واضح نہیں ہوگا. جیسے جیسے ہم آگے پڑھیں گے آپ کو زیادہ اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن نبر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز جو کہ مائنڈ میں آپ کو رکھنی ہے, اور وہ یہ کہ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں, کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہمیں آواز کو اونچا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہمیں آواز کو تھوڑا اونچا کرنا پڑتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ کے اوپر پریشرائز کر کے نہیں پڑھنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب شروع میں مخارج سیکھ رہے ہوتے ہیں یا مدود یا نون میم ساکنہ کے احکامات اور یہ ساری چیزیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس انیشیل لرننگ کے پروسیس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ساؤنڈس کو ایگزاجریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ساؤنڈس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ایگزاجریشن آنے لگ جاتی ہے, ہم اس کو بہت دبا دبا کے لیٹرز کو پڑھنے لگ جاتے ہیں اور یعنی ہر جگہ کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہوتا ہے. تو اب ہم نے اس پریشر کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے نارمل ریڈنگ کے اندر جہاں جہاں ہم نارمل پڑھ رہے ہیں وہاں وہاں آپ نے پریشر کو آنے نہیں دینا اور اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر کے پڑھنا ہے. صحیح, یعنی کہیں پر بھی آواز کے اندر اس طرح کا پریشر نہ آئے کہ لگے کہ آپ شاید ادغام کر کے پڑھے ہیں. جیسے اگین وہی چیز ہے کہ امام ابن الجزری نے اس میں بہت زیادہ لکھا ہے کہ تجوید کو کس طرح سے ہونا چاہیے. صحیح ہے, اور اس میں انہوں نے ایک چیز یہ بھی مینشن کی کہ جب آپ حروف کو ادا کریں تو مکملاً من غیر ما تکلف, کہ جو آپ کا لیٹر ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے بغیر کسی تکلف کے, بغیر برڈن کے, یعنی بہت سمود, بہت ایز آپ کی پروناؤنسیشن میں ہونا چاہیے. دبا دبا کر لیٹرز کو گھٹا کر یا اپنے آپ کو ٹائرڈ کر کے, ماؤتھ کو ٹائرڈ کر کے ہم نہیں بولیں گے. یہ بالکل ریلیکس آپ کی ساؤنڈ ہوگی, کہ آپ کی جو ساؤنڈ ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی برڈن, کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ایک جو تکلف آتا ہے وہ نبر کا ہی ایک سٹائل آ رہا ہوتا ہے ہر جگہ کے اوپر. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ بسم اللہ کو دیکھیں تو اگر آپ بسم اللہ کو یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن, تو آپ دیکھیں یہ نبر ہے. آپ نے سین کو آپ ایمفسس کریں ہر لیٹر کے اوپر جہاں پر ضرورت نہیں ہے. یہاں پر اب آپ کسی جگہ کے اوپر لیٹر کو دبائیں گے نہیں, بسم اللہ الرحمن, اس کو ہر یوں کر کے دبانا, ہر رحمان الرحیم یوں کر کے پروناؤنس کرنا, تو یہ ایکچولی ایگزیجریٹڈ پریشر ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا. تو نبر پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں یہ چیز رکھ لینی چاہیے کہ بہت آرام سے ریلیکس ہو کے آپ نے ساؤنڈس کو پروناؤنس کرنا ہے. اور اگر آپ کہیں پر اپنے آپ کو فیل کرے ہوتے जैसे मुझे भी याद है कि शुरू में प्रैक्टिस के टाइम पीरियड में मुझे कभी कभी ना अपने थ्रोट में, अपने बैक पार्ट ऑफ टंग में बहुत टायर्डनेस फील होने लग जाती थी, और मैं जब प्रैक्टिस करती थी तो मैं ज्यादा देर प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे इस तरह से हुआ, या मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि मैं जो जरूरत है उससे ज्यादा अपने आप को दबा रही होती हूँ। जैसे अगर जबान को सीधा रखने का कहा गया तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि जबान को नीचे दबाना शुरू कर देना है, तो मैं उसको सीधा रखने के लिए उसको ज्यादा प्रेशराइज कर रही होती हूँ, जिसकी वजह से मुझे टायर्डनेस मुंह के अंदर फील होने लग जाती है और मैं ज्यादा देर रीडिंग प्रैक्टिस तजवीद के साथ नहीं कर सकती। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि आवाजों को इस तरह से दबाया जा रहा है कि वो हलक के अंदर जा रही है, तो किसी भी तरह का तकल्लुफ जो कि तजवीद में नहीं होना चाहिए, अगर हम उसको ऐड कर लेंगे तो वो दुरुस्त नहीं है। और खास तौर पर आवाज को उठाना, यानी अगर आप आवाज को उठा रहे हैं उन हिस्सों के ऊपर जहां पर जरूरत नहीं है, तो फिर ये भी तकल्लुफ के अंदर आएगा। और दूसरी अहम चीज ये कि आपके वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे जहां पर आप नबर करें। अगर आप हर जगह पर ही नबर कर रहे हैं तो जहां पर आपको नबर करने की जरूरत है वहां पर आपका नंबर वाजे नहीं होगा, ठीक है? तो डेफिनेशन इसकी ये है कि आवाज को ऊंचा करना किसी लफ्ज के खास हिस्से पर, ताकि उस खास हिस्से या हर्फ की आवाज उसके नेबरिंग लेटर से प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है? आवाज को ऊंचा करना वर्ड के किसी खास हिस्से के ऊपर, ताकि उस खास पार्ट की आवाज उसके नेबरिंग लेटर से जरा प्रोमिनेंट हो जाए। कुराने पाक में 5 सर्कमस्टांसेस हैं जिनके ऊपर हम नबर करके उन पार्ट्स को अदा कर रहे होते हैं। जो फर्स्ट सर्कमस्टांस है वो ये है कि जब भी आप किसी मुशद्दद हर्फ के ऊपर स्टॉप करते हैं, तशदीद वाले हर्फ के ऊपर रुकते हैं, तो आप नबर करके रुकेंगे, ठीक है? इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा, और दूसरा जो बुक वन है उसको साथ रखिए, ठीक है? अगर आप उसको बंद कर देंगे तो वो फिर आपको चीजें अच्छी से समझ में नहीं आएंगी। जब भी हम किसी मुशद्दद हर्फ के ऊपर वक्फ करें तो हम नबर करके रुकते हैं। अब आप देखें कि जो तशदीद वाला हर्फ है, जब आप तशदीद वाले हर्फ के ऊपर रुक रहे हैं तो आप उसको साकिन कर रहे हैं ना, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सूरतुल कमर में हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं इसकी, आप लोग निकाल लीजिए ताकि हम उसको ही थोड़ा प्रैक्टिस में रखते हैं। सूरतुल कमर 27 जुज में है, पेज नंबर है 528 मदीना मुसहफ में, और ये सूरत रहमान से पहले है, ठीक है? सूरत कमर। अब आप देखिए कि यहां पे हम नबर क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट आया को देखिए, अब फर्स्ट आया का वर्ड है वंशकुल कमरू। जब आप यहां पर स्टॉप करते हैं तो आप कैसे स्टॉप करते हैं, वंशकुल कमरू, ठीक है? वंशकुल कमरू। नेक्स्ट आया पर आ जाए, नेक्स्ट आया का जो एंड है वो है सिहरुम मुस्तमिरुन, राइट? आप देखें कि फर्स्ट आया में एक रॉ है अल कमरू, उस एक रॉ को आपने क्या किया, साकिन कर दिया। जबकि जो सेकंड आया है उसमें दो रॉज हैं, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं ऑलरेडी कि तशदीद वाले हर्फ के नीचे दो लेटर्स होते हैं, तशदीद वाले हर्फ के नीचे दो लेटर्स होते हैं, पहला लेटर साकिन होता है दूसरा मुतहरक होता है, राइट? ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहां पर दो रॉज हैं, मुस्तमिर एक ये वाला रॉ और दूसरा रून, दूसरा ये वाला रॉ, ठीक है? अब री और रून यहां पे ये दो रॉज हैं, जो मुस्तमिर ये वाला रॉ है ये ऑलरेडी साकिन है, रून को आपने साकिन कर देना क्योंकि आप वक्फ कर रहे हैं तो आप साकिन कर देंगे। अब साउंड में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ताकि पता चले कि अल कमर और मुस्तमिर रून में क्या डिफरेंस है। राइट, साउंड में कुछ फर्क होना चाहिए ना। अगर हम इसको भी यूं ही स्टॉप करते हैं, मुस्तमिर, जैसे हमने वर्ड पढ़ा अल-कमर, अगर हम ऐसे ही स्टॉप करते हैं मुस्तमिर, तो ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई वर्ड ऐसा था अल-कमरू की तरह, मुस्तमिरू था शायद, और आपने उसको साकिन कर दिया। अब पता नहीं चलेगा कि ये हर्फ मुशद्दद था जिसको जिसमें डबल साकिन आगे, यानी मुशद्दद हर्फ था जिसमें एक रो ऑलरेडी साकिन था, सकिन आपने साकिन कर दिया वक्फ में, ये पता नहीं चलेगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने ही रॉ को साकिन कर दिया, राइट? तो ये जो डिफरेंस है सिंपल साकिन करने में और मुशद्दद हर्फ को साकिन करने में, इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा सा आवाज को ऊंचा करना पड़ता है, ताकि लिसनर को ये आइडिया हो सके कि जिस वर्ड के ऊपर स्टॉप किया जा रहा है वो क्या है, मुशद्दद है। ठीक है, अब हम कैसे इसके ऊपर स्टॉप करेंगे, यूं करके, वयकूलू सिहरुन मुस्तमिर, यानी इसको मुस्तमिर यूं करने के बजाय मुस्तमिर थोड़ा आप उसको प्रेशर देंगे। ठीक है, प्रेशर के साथ स्टॉप करेंगे और ये डिफरेंट हो जाएगा। दोनों वर्ड्स को इकट्ठा मिला के पढ़ती हूँ। अब आपने इसको थोड़ा फोकस करें कि किस तरह से दोनों स्टॉप्स की साउंड डिफरेंट आ रही है। वंशक़ुल क़मर सिहरुन मुस्तमिर, ठीक है, तो ये इस तरह से आप आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। और ये यहाँ पर इन आयात में बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे आय नंबर 3 का एंड भी यहीं पर हो रहा है, वकुल्लु अम्रिम मुस्तकिर, यहाँ पर भी नबर की जरूरत होगी। स्टॉप करने में रॉ लाइट होगा, मिलाकर पढ़ने में रॉ हैवी होगा। मुस्तमिरून मिलाने में मुस्तमिरून, तब रॉ हैवी होगा। स्टॉप करने में चूंकि रॉ साकिन से पहले कसरा आ गई है तो फिर रॉ लाइट होगा, मुस्तमिर। ठीक है, अगर रॉ साकिन कर दिया जाए तो वो अपने से पीछे वाली हरका को फॉलो कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और अगर रॉ मुतहर्रिक हो तो फिर वो अपनी ही हरका को फॉलो करेगा। फिर आय नंबर 3 में मुस्तकिरून, यहां पर भी नबर के साथ स्टॉप करेंगे, मुस्तकिर। फिर इसी तरह से आप देखें कि यहाँ पे आय नंबर 19 में भी वर्ड आ रहा है सेम वर्ड, नहसिम मुस्तमिर, यहाँ पर भी हम नबर के साथ स्टॉप करेंगे। एक वर्ड सूरतुल बकरा में भी आता है और वो लाम मुशद्दद के साथ स्टॉप हो रहा है, ये अब हम बुक 2 में इंशाल्लाह आगे इस रॉ हैवी और लाइट को पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छा। चूंकि रॉ की क्वालिटी है कि इसके अंदर रिपीटेशन होती है, यानी आपको ना थोड़ी जब जबान आपकी टच करती है ऊपर रूफ के साथ तो वो मखरज छोड़ती नहीं है, लेकिन मखरज में हल्का सा गैप देकर वाइब्रेट करती है, वहां पे एक या दो दफा ना उसकी साउंड की रिपीटेशन होती है अपने एक्सेस के गिरधी, इसको हम कहते हैं तकरार, यानी अर अर। तो इसमें आपको अद अब यूं हिट की साउंड नहीं आती बल्कि थोड़ी वाइब्रेट करती हुई साउंड फील होती है। अगर वाइब्रेशन से ये मुराद है तो बिल्कुल होगा, चाहे वो मुशद्दद हो चाहे वो सिंपल हो, ये इस कंपल्सरी पार्ट है रॉ का। अगर वाइब्रेशन से मुराद अर ये वाली साउंड है तो ये वाली वाइब्रेशन नहीं होगी, सही है, यानी एयर वाली वाइब्रेशन नहीं होगी। तकरार जो है वो दो या तीन दफा जायज है, मतलब उससे ज्यादा नहीं, आप एग्जाजरेट नहीं कर सकते तकरार के अंदर भी ना। और ये हमने रॉ के कॉमन एरर्स में पढ़ा था कि समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको अर अर करके बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, वो उसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, अभी हम वर्ड देख रहे थे, जो मैं वर्ड आपको बता रही थी फतबोलुन, ये सूरतुल बकरा में आता है, आया नंबर है 265, पेज नंबर 45, थर्ड जुज है। अब इस वर्ड को देखिए तो ये है वाबिलून फतबोलुन, तो यहां पर भी जब आप स्टॉप करेंगे तो आप नबर के साथ स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहां पे भी डबल लाम आ रहा है। ठीक है, पहला लाम ऑलरेडी साकिन था, सेकंड को आपने लून वाले को आपने साकिन कर दिया, तो डबल लाम जब साकिन होगा तो उसको वाजे करने के लिए देखें वाबिल फतवल, अगर एक तरीके से स्टॉप होगा तो पता नहीं चलेगा कि आप मुशद्दद लेटर पर स्टॉप करें, तो आपको वो तशदीद जाहिर करने के लिए, तशदीद को स्किप करना क्या था, लहनजली पूरा एक लेटर स्किप हो रहा है ना, अगर आप तशदीद नहीं वाजे करते तो आपका पूरा लेटर स्किप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है नबर करना जरूरी है। वाबिल फतबल यूं नहीं पढ़ सकते बल्कि कैसे पढ़ेंगे, वाबिल फतबल फतबल, यहाँ आवाज आपकी थोड़ी ऊंची चली जाएगी, ठीक है, वाबिल ये नॉर्मल होगी और फतबल यहाँ आपने थोड़ा आवाज को ऊंचा कर देना, सही। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं कुरान पाक में जहां के जहां पर आपको नबर की जरूरत होती है। इस पार्ट को अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है कि हम नबर क्यों कर रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया ना, इसको थोड़ा थ्रेटिकल देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग के असल में क्या हो रहा होता है। जी तो हमने अगर मैं इसको रिव्यू करूं तो हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा कि जब भी हम रॉ कोई भी लेटर मुशद्दद हो और आप अगर उसके ऊपर स्टॉप कर लें तो उस तशदीद को जाहिर करने के लिए और उसको सिंपल साकिन से डिफरेंट करने के लिए आपको नबर करने की जरूरत होती है। अगर आप आवाज नहीं उठाते तो लिसनर समझेगा कि आपने बिल्कुल सिंपल लेटर पढ़ा है, सिंपल एक लेटर था उसको साकिन कर दिया, नबर से ये चीज जाहिर होती है कि आपने इसको मुशद्दद हर्फ के ऊपर स्टॉप किया, राइट। अब आप देखें कि असल में नबर की जरूरत क्यों पड़ रही है, होता यह है कि फॉर्मेशन ऑफ साउंड को थोड़ा सा देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साउंड में हमने क्या पढ़ा था कि जो साकिन हर्फ है वो कौन सी फॉर्मेशन से आता है, किसी को याद है? साकिन हर्फ की फॉर्मेशन क्या थी? तबाउत, तस्वादुम, इहतजाज, तस्वादुम। अब आप देखें कि अल कमर ये तस्वादुम से आया, राइट, रॉ साकिन जो है वो कैसे आ गया, तस्वादुम से आ रहा है। अब जब हम वर्ड पढ़ते हैं मुस्तमिरून, इसमें मेर वाला जो रॉ है मुस्तमिर, चूंकि ये रॉ साकिन है ये तस्वादुम से आ रहा है, रून वाली जो साउंड है वो मुतहरिक हो रही है तो वो डिफरेंट जा रही है, उसको हम नहीं देखते, तबाउत से आ रही है उसको हम नहीं देखते। अब आप देखें कि मेर ये रॉ तो साकिन था, रून वाले को भी आपने साकिन कर दिया तो मेर तो है ही तस्वादुम से, आई मीन मेर जब उसे वक्फ करेंगे तो मेर तो है ही साकिन, ये तस्वादुम से है, जब रो वाले को भी साकिन कर देंगे तो वो भी तस्वादुम से आ जाएगा। दो तस्वादुम आप इकट्ठे कैसे कर सकते हैं, राइट, दो तस्वादुम इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए क्या होता है कि वो तस्वादुम प्लस तस्वादुम इज अ स्ट्रॉन्ग तस्वादुम। तस्वादुम और तस्वादुम जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है कि एक आप कह सकते हैं कि एक एक साउंड के अंदर एक वो एग्जैजरेशन आ रही है, आपको एक ऊंची आवाज सुनाई दे रही है, एक ब्लास्ट की आवाज आ रही है, राइट, जो है वो क्या हो रहा है, तसादुम और तसादुम, दो तसादुम इकट्ठे हो गए तो आपको एक बड़ा तसादुम सुनाई देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है, समझ में आई बात, एक रॉ ऑलरेडी साकिन था तसादुम हो रहा था, दूसरे रॉ को भी आपने साकिन करके तसादुम कर दिया, अब दो तसादुम आप कर नहीं सकते इकट्ठे, तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको थोड़ा बड़ा तसादुम करके वाजे कर देते हैं कि ये डबल लेटर यहाँ पर डबल लेटर के ऊपर स्टॉप स्टॉप हो रहा है, यानी मुशद्दद लेटर के ऊपर स्टॉप हो रहा है। ओके, अब हर मुशद्दद लेटर के ऊपर हम नबर भी नहीं करते, कुछ ऐसे तशदीद वाले हरूफ होते हैं जिनके ऊपर नबर की जरूरत नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया था ना कि याद रखिएगा कि हम नबर उसी वक्त करते हैं जब हमें जरूरत हो। अब हमें जरूरत थी कि हमने सिंपल साकिन और मुशद्दद साकिन को वाजे करना, राइट, और हमने कहा कि सिंपल साकिन तसादुम से आता है, मुशद्दद साकिन तसादुम प्लस तसादुम से आता है, तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, एक सिंपल तसादुम होगा और एक ग्रैंड तसादुम होगा, राइट। तो ये चीज डिफरेंस इन दोनों का वाजे करने के लिए हम यहां पर थोड़ा नबर करके वाजे करते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर नबर की जरूरत नहीं होती, आप ये कह सकते हैं द एक्सेप्शनल ऑफ फर्स्ट सर्कमस्टेंस, और वो कौन कौन से हरूफ हैं, नंबर वन नून मुशद्दद एंड मीम मुशद्दद। रीजन आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताई है, नबर हम इसलिए करते हैं ताकि सिंपल साकिन और मुशद्दद साकिन में डिफरेंस क्लियर हो। अब आप मुझे बताइए कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के ऊपर हम नबर नहीं करते, तो क्यों नबर नहीं करते? हाँ कह सकते हैं गुना है, मगर गुना तो सिंपल साकिन में भी है। ये इनकम्प्लीट आंसर है, गुना है जरूर है गुना, मगर गुना तो हमेशा होगा ना नून में। आप सिंपल साकिन बोलेंगे तो भी गुना होगा, मुशद्दद साकिन बोलेंगे तो भी गुना होगा। हिंट एक तरह से मैंने आपको दिया, गुना तो हमेशा होगा, तो डिफरेंस कैसे क्लियर होगा? बिल्कुल गुना की टाइमिंग से जो है डिफरेंस क्लियर हो जाता है। ठीक है, गुना आप जब सिंपल साकिन बोल रहे हैं तो सिंपल साकिन में क्या होता है, गुना आपका नाकिस है, और मुशद्दद साकिन जब बोला जा रहा है तो गुना आपका अकमल है। तो ये डिफरेंस गुना की टाइमिंग से क्लियर होता है। जब आप तशदीद वाले नून के ऊपर स्टॉप करते हैं या मीम के ऊपर स्टॉप करते हैं, तो आप नाकिस गुना करके नहीं करते, आप अकमल गुना करके करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुम्मा के ऊपर अगर हम रुकते हैं तो हम इसको कैसे स्टॉप करेंगे? अकमल गुन्ना करके। तो ये जो आपने किया ना, इससे पता चल गया कि आप मुशद्दद लेटर पर स्टॉप करें। अब यहां पर नबर की जरूरत नहीं है। अब कुराने पाक में वर्ड आता है, बिल्कुल इसके ऊपर भी नबर नहीं करेंगे। ये वर्ड आ रहा है ना, स्टॉप में इसको भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, इसमें नबर नहीं होगा। कुराने पाक में एक वर्ड आता है लाकिन, और एक आता है लाकिनिल लदीना, समटाइम्स इस तरह से भी आता है, समटाइम्स तशदीद के साथ आता है, वलाकिन और लाकिनी इस तरह से भी आता है, यानी लाकिन भी आता है और लाकिन भी आता है सिंपल नून के साथ भी। अब जब दोनों के ऊपर स्टॉप होता है, वर्ड एक है, लेकिन जब दोनों के ऊपर आप स्टॉप करते हैं तो आप कैसे स्टॉप करेंगे? लाकिनिल सिंपल नून के ऊपर स्टॉप होगा लाकिन, नाकस गुन्ना से लाकिन, जबकि मुशद्दद नून के ऊपर स्टॉप कैसे होगा? वलाकिन अकमल गुना से। तो यहां पर गुना की टाइमिंग्स बता देती हैं कि लेटर सिंपल साकिन था या लेटर मुशद्दद साकिन था। जैसे वर्ड आते ना इन्नल्लदीना, इसी तरह से इनके साथ भी वर्ड आता है, यानी इन्ना भी होता है और इन भी होता है, सिंपल इन दोनों हरूफ है ना, इन ना भी हर्फ है, और इन जैसे इन और माँ के साथ आता है या शर्त के तौर पे जो आ रहा होता है वो भी एक हर्फ है। अब दोनों में जब स्टॉप होगा तो साकिन तो आखिर में नून ही होगा, इन या इन दोनों नून साकिन हो रहे, तो इसमें क्या होता है कि जो इन है सिंपल इन के ऊपर स्टॉप करते हुए आप क्या करेंगे? नाकस होना इन, और इन ना के ऊपर स्टॉप करते हुए आप क्या करेंगे? अकमल गुना इन। जी ये मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली इसको ना काउंट से हम डिस्क्राइब नहीं करते। नून जो रैंक्स है ना, गुना के रैंक्स, ये एक्चुअली आपकी स्पीड पे डिपेंड करते हैं। आप हदर पढ़े हैं, तहकीक पढ़े हैं, आप तदवीर पढ़े हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप तहकीक पढ़े हैं तो आपका गुना अकमल लंबा होगा, अगर आप हदर पढ़े हैं तो आपका वही गुना अकमल शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्पीड से होता है और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग प्रैक्टिस से खुद ही इस चीज का एक अंदाजा होता चला जाता है कि आपने इसको कितना खींचना है। इसको हम काउंट से कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते, यानी हरकत से नहीं आप करेंगे इसको डिस्क्राइब। सही, इसका एक और एक्सेप्शनल केस है और वो है कलकला हर्फ मुशद्दद। ठीक है, कलकला हर्फ मुशद्दद यानी कुतुबु जदीन। अगर इन हरूफ में से कोई भी हर्फ तशदीद वाला हो, वो वर्ड के आखिर में हो और आप वहां पे वक्फ कर लें, तो आपको नबर की जरूरत नहीं होती। अब नबर की जरूरत क्यों नहीं होती, ये जब भी मैंने आपको तसादुम प्लस तसादुम ग्रैंड तसादुम समझाया ना, हम उससे इसको समझते हैं। आप देखें कि कलकला की फॉर्मेशन क्या थी, कलकला हर्फ की फॉर्मेशन क्या थी। अब आप देखें कि जो कलकला हर्फ है वो किससे आते हैं? वो तबाउत से आते हैं, वो पार्टिंग से आते हैं, वो तसादुम से नहीं आ रहा, राइट? अब आप देखें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरतुल लहव में आता है तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये जो बा है ना ये तशदीद के साथ है। अब जब आप इसके ऊपर स्टॉप करते हैं ये डबल बा है, व तब बा, राइट, ये डबल बा आ रहा है यहाँ, तब बा, यहाँ पर दो बाज हैं और दोनों यहाँ पर तशदीद के नीचे दो बा हैं। पहला बा साकिन है, दूसरा बा फतहा के साथ है। अब आप साकिन वाले बा के ऊपर कलकला नहीं करते क्योंकि दो बा है ना और इनका आपस में मर्जिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह इसको हम ज्यादा डिटेल से आगे पढ़ेंगे, मगर आप ये याद रखें कि फर्स्ट बा पे कलकला नहीं हो रहा, यूं नहीं होता ना, व तब बा, यूं नहीं आप पढ़ते, व तब बा यूं नहीं पढ़ते, ये वर्ड पढ़ा जाता है व तब बा, क्योंकि तशदीद आ गई ना फिर, इसलिए पहले बा के ऊपर व तब उसे पढ़ा जाएगा मगर उस पर कलकला नहीं होगा। जब उस पर कलकला नहीं हो रहा तो उसकी फॉर्मेशन तसादुम है, व तब, देखिए तसादुम हो गया लिप्स का, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं बा तो आप तबाउत करते हैं, और जब आप कलकला करते हैं यानी अगर आप वक्फ कर देते हैं तो भी आप तबाउत करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि बा में आपके लिप्स खुलते हैं और कलकला करते हुए आपके लिप्स नहीं खुलेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन डिफरेंट होगी है। पहला साकिन तसादम से है, दूसरा साकिन तबाउत से है। चूंकि ये फॉर्मेशन डिफरेंस हो रहा है ना, आप ये दोनों फॉर्मेशन एट अ टाइम करें, व तब, पहला तसादम किया फिर आपने तबाउत किया, व तब, राइट, तो ये बहुत क्लियर है। अब अगर हम इसके सिंपल साकिन को पढ़ें, सिंपल साकिन को, तो वो भी तबाउत से होगा, वो कैसे होगा, लेकिन उसमें तसादम नहीं होगा। इसमें देखिए तसादम है फिर तबाउत है, व तब, राइट, तब। अब इसी तरह से मैं अगली आयत को पढ़ती हूँ, मा अगुना अन्हु व मा कसब, यहां पर तो साधुम नहीं है, यूं नहीं है, कसब यूं नहीं है, व मा कसब। अब आप देखिए कितना क्लियर डिफरेंस है, व तब कसब, हतब, आई एम सॉरी, अल हतब लहब। अब ये कितना क्लियर डिफरेंस है तशदीद वाले में और सिंपल में, तो इसलिए इसका डिफरेंस है क्योंकि इनकी फॉर्मेशन डिफरेंट हुई है और आप दोनों फॉर्मेशंस बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। व तब दोनों फॉर्मेशंस आराम से हो रही है, लहब सिंगल फॉर्मेशन, तो वो डिफरेंस क्लियर हो गया ना। जबकि वहां पर फॉर्मेशन सेम होने की वजह से आप दोनों फॉर्मेशंस नहीं कर पाते थे, नहीं तसादुम और तसादुम था तो दोनों फॉर्मेशंस नहीं की जा सकती थी, इसलिए आप ग्रैंड तसादुम से उस चीज को वाजा करते हैं। वर्ड आते हैं कुरान पाक में अल-हक़ तशदीद के साथ भी और बगैर तशदीद के भी, ठीक है। तो अगर आप तशदीद वाले कौफ के ऊपर स्टॉप करते हैं तो आप करेंगे अल-हक़ तसादुम प्लस तबाउद अल-हक़, ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा। और अगर आप सिंपल कौफ के ऊपर साकिन करते हैं तो आप कैसे करेंगे, अल-हक़ हक़, ये क्विक होगा, इसमें आपने हक दबाना नहीं है, जैसे ही हिट होगा वैसे ही आपका कम बैक होना चाहिए, अल-हक़ अल-हक़, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कमस्टेंस था, इंशाल्लाह इसको दोबारा से गो थ्रू होइएगा कि ये नया टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर इसको मजीद इंशाल्लाह ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे। بارككم الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته